रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। सुरक्षा मुद्रण संबंधी विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभा से बहुमत से हुआ पारित। आपदाजन्य प्रकोप व्यवस्थापन के लिए सभी राजनीतिक दल सम्मिलित, साझा मंच बनाया जाना चाहिए, उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने का कथन। और मध्य गजा स्थित एक विद्यालय पर इसराइली सेना के हवाई हमले में कम से कम 39 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा ने सुरक्षण मुद्रण संबंधी विधेयक 2080 को पारित किया है। आज की बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा द्वारा प्रस्तुत शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के प्रतिवेदन सहित सुरक्षण मुद्रण संबंधी विधेयक 2080 को सभा के बहुमत ने पारित किया। इसी तरह बैठक में अर्थमंत्री वर्षमान पुन द्वारा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2080 और विनियोजन विधेयक 2081 पर विचार करने के प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकृत किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन ISA की स्थापना से संबंधित समझौता फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का अनुमोदन भी प्रतिनिधि सभा बैठक ने किया है। बता दें कि इस समझौते को ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बसनेत ने प्रस्तुत किया था। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक के विशेष समय में सांसदों ने बाढ़, भूस्खलन, डुबान, लगायत आपदाओं से संभावित क्षति न्यूनीकरण, सड़क स्तरोन्नति, पूर्वाधार निर्माण, लगायत समसामयिक विषयों में सरकार का ध्यान आकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण को स्वीकृत किया है। ये जानकारी सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने दी। साथ ही भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क और इसराइल के लिए नेपाली राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने किया। बैठक में मॉनसून शुरू होने के बाद उत्पन्न हो सकने वाली विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए सरकारी संयंत्र को तैयार रखने के संबंध में विचार विमर्श हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड को आगामी सितंबर में आयोजित होने वाले समिट ऑफ द फ्यूचर सम्मेलन में सहभागिता के लिए निमंत्रित किया है। नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें महासचिव गुटेरेस का निमंत्रण पत्र हस्तांतरित किया। ये जानकारी प्रधानमंत्री के प्रेस विज्ञ मनहरी तिमिल सिन्हा ने दी। मौके पर प्रधानमंत्री ने महासचिव गुटेरेस के नेपाल भ्रमण कर यहां के सरोकार और रूचि का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने को लेकर उनके प्रति आभार जताया। साथ ही ये भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में सहभागी होने के लिए वे सकारात्मक हैं। उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने ने कहा कि आपदाजन्य प्रकोप व्यवस्थापन के लिए सभी राजनीतिक दलों का साझा मंच बनाया जाना चाहिए। आज मंत्रालय में आयोजित मानसून से पूर्व की तैयारी और प्रतिकार्य संबंध में राजनीतिक दलों के साथ अंतर्क्रिया में उप प्रधानमंत्री लामिछाने ने ये बात कही। साथ ही आपदा के समय उद्धार और राहत के कामों में काम कर सकने वाली तालीम प्राप्त जनशक्ति का नाम उपलब्ध कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध भी किया। अंतर्क्रिया में नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी नेपाल, मजदूर किसान पार्टी लगाये दलों का प्रतिनिधित्व था। वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड के संरचनागत सुधार करने का निर्देश किया है। मंत्रालय के उद्योग सचिव कृष्ण राउत और वाणिज्य सचिव दिनेश कुमार घिमिरे सहित आज अनुगमन के लिए पहुंचे मंत्री भंडारी ने नेपाल सरकार के बड़े पैमाने पर निवेश वाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड के सुधार के लिए काम करने का कर्मचारियों को निर्देश किया। तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थान और नेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड के आपस में मर्ज होने के बावजूद कानूनी तौर पर दिख रही समस्याओं के समाधान संबंध में मंत्री भंडारी ने जिज्ञासा रखी थी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबु राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। तराई मधेश के जिलों में पति के दीर्घ जीवन और सुस्वास्थ्य की कामना के साथ आज वट सावित्री पर्व मनाया गया। हर साल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाए जाने वाले वट सावित्री अर्थात बरसाइत पर्व में विवाहिता महिलाएं दिनभर निराहार रहकर पति की दीर्घायु की कामना करते हुए नैवेद्य पूजा सामग्री सहित बरगद के पेड़ के नीचे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सहित देवताओं की पूजा अर्चना करती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सती सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने और पति के जीवित होने के बाद इस पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई थी। निकपा माओवादी केंद्र का समाज कल्याण विभाग सामाजिक न्याय सुशासन और समृद्धि के अभियान को केंद्र में रखकर सामाजिक अभियंता के समक्ष वृहत्तर अंतरक्रिया एवं सभा करने जा रहे हैं। कल और परसों काठमांडू में आयोजित की जाने वाली सभा में देश भर से 300 से अधिक सामाजिक अभियंता सहभागी होंगे, ये जानकारी विभाग प्रमुख सत्या पहाड़ी ने दी। सामाजिक न्याय सुशासन और समृद्धि की यात्रा सामाजिक अभियंताओं की अर्थपूर्ण सहभागिता और हमारी प्रतिबद्धता के नारे पर आधारित सभा से काठमांडू घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष के बीच इसराइली सेना ने मध्य गजा पट्टी में नुसीरात शिविर में एक स्कूल को निशाना बनाया है। इस हवाई हमले में कम से कम 39 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। 39 फिलिस्तीनी में से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इसराइली लड़ाकू जेट ने कम से कम 3 कक्षाओं पर कई मिसाइलों से हमला किया। इस स्कूल में सैकड़ों फिलिस्तीनी शामिल थे। वहीं एपी की रिपोर्ट के अनुसार इसराइली सेना का कहना है कि उसने गजा पट्टी में एक स्कूल के अंदर हमास परिसर पर हमला किया। हमास की तरफ से संचालित गजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने स्कूल पर इसराइल के हमले को भयानक नरसंहार बताया और इसकी निंदा की। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। संरक्षण मुद्रण संबंधी विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभा से बहुमत से हुआ पारित। आपदाजन्य प्रकोप व्यवस्थापन के लिए सभी राजनीतिक दल सम्मिलित साझा मंच बनाया जाना चाहिए, उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने का कथन। और मध्य गजा स्थित एक विद्यालय पर इसराइली सेना के हवाई हमले में कम से कम 39 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।